ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, इस संगम युग पर तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा बहुत ही शुभ मानी जाती है। बृहस्पति की दशा आने से हमारी चढ़ती कला होती है, हर प्रकार से चढ़ती कला होती है। तो तुम्हारी इस समय चढ़ती कला है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। परंतु फिर बाबा ये भी याद दिलाते हैं, ये बृहस्पति की दशा सदा कायम रहे उसके लिए याद बहुत जरूरी है। अगर गफलत की बाबा को भूले तो फिर माया वार करेगी, तो बृहस्पति की दशा खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा होने से सारी दुनिया का उद्धार हो जाता है। हाँ, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला होती है तो सारा संसार ही बदल जाता है, नरक से स्वर्ग बन जाता है, सभी सुखी हो जाते हैं। लेकिन वो कायम रहे चढ़ती कला, कायम रहे बृहस्पति की दशा, उसके लिए बाबा कहते याद बहुत जरूरी है, क्योंकि माया गफलत कराती है और माया गफलत कराने के कारण फिर नीचे गिरा देती है। तो नीचे न गिरे, सदाई बृहस्पति की दशा बैठी रहे, उस पर हमको बहुत अटेंशन देना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 12/8/2026 है। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अच्छे में अच्छी दशा तो बृहस्पति की दशा है, वो बृहस्पति की दशा भी बाबा की याद से ही बैठती है, और वो याद कायम रहे तभी तो बृहस्पति की दशा भी कायम रहेगी। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। ज्योतिषी भी कहेंगे ना, अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। धन की चढ़ती, धन में भी चढ़ती कला, नाम मान शान में भी चढ़ती कला, आप ऊंचे जा रहे हो बृहस्पति की दशा है। कभी कहेंगे राहु की दशा है, तो राहु की दशा तो सब कुछ खत्म कर देती है। तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम दिनों दिन उन्नति कर रहे हो। तो याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है, अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो फिर क्या होगा, तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? याद जरूरी है तभी यह बृहस्पति की दशा कायम रहेगी। तो अगर याद नहीं है, बृहस्पति की दशा नहीं ठहरी है, तो बाबा कहते उसकी रिजल्ट क्या होगी और क्या युक्तियां अपनाएं जो बृहस्पति की दशा सदा बैठी रहे और हमारी उन्नति होती रहे। तो युक्तियां क्या है? उत्तर, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं होगा तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। बड़ा संभालना होगा माया से, योग नहीं होगा तो चढ़ती कला होगी नहीं और माया की प्रवेशता हो जाती है, फिर गिर पड़ते हैं। अब पहली बात ये, दूसरी बात देह अभिमानी बन फिर अनेक भूले करते रहते हैं, याद नहीं है तो गिर पड़ते हैं। फिर दूसरी बात देह अभिमानी बनकर अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टा काम कराती रहती है, फिर पतित भी बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं मुख में मुहिलरा डाल दो, चुप एक चुप सौ सुख, तो कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहिलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो, तो सदा बृहस्पति की दशा बैठी रहेगी। गीत है ओम नमो शिवाय, बहुत सुंदर गीत है, सारी महिमा शिव बाबा की है इस गीत में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्मा बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। शिव बाबा का दूसरा नाम वृक्षपति भी है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। किसने बिठाई बृहस्पति की दशा? स्वयं वृक्षपति बाप ने। तो इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम, ये दो अक्षर होते हैं, तो हमारे ऊपर खास और सारी दुनिया पर आम, क्योंकि चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, तो सबकी चढ़ती कला हो जाती है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा खास किस पर बैठती है? बाबा कहते हैं भारत पर, भारतवासियों पर। तो बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर के हमको नर से नारायण बनाते हैं। वृक्षपति आकर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, हमारी चढ़ती कला कराते हैं और हम नर से नारायण बन जाते हैं। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है, हाँ, बाकी जो दूसरे हैं, हमारे पर तो बृहस्पति की दशा है ही है, तो बाकी जो है वो नंबर वार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तो मुक्ति मिल जाएगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और फिर आएंगे नंबर वार अगले कल्प में। कलयुग अंत तक आते रहते हैं, अभी तक भी आत्माएं आती रहती है। हरेक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पाठ मिला हुआ है। बेहद है ना सब, केवल भारतवासियों की बात नहीं, अपना अपना पार्ट मिला है, लेकिन सभी धर्मों की आत्माएं, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है ना, तो नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक का, ये बेहद का नाटक राजा से लेकर प्रजा तक का। सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, आज सारा दिन ये नशा रहे, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, हमारी चढ़ती कला है। अब बच्चे जानते हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, ऐसे नहीं कि केवल एक दिन ही बैठती है, ऐसे नहीं एक दिन के लिए केवल बृहस्पति की दशा है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। परंतु फिर बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी, याद भूलने से फिर माया के विघ्न आते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दशा में कोई विघ्न नहीं, चढ़ते ही जाते, चढ़ती कला ही है, पर याद भूली तो फिर माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है, अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। याद हमको कायम रखनी है, नहीं तो बाबा कहते गिरेंगे ही, फिर दशा बदल जाएगी तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर है। बृहस्पति की दशा माना स्वर्ग की दशा, और दूसरा जीवन मुक्ति की दशा, वो हमारे ऊपर है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है, भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। भारत का उत्थान है तो विश्व का उत्थान है, भारत का पतन है तो विश्व का पतन है, तो खास भारत पर ये कहानी बनी हुई है, और फिर आम सारी दुनिया पर। बाप भी भारत में ही आते हैं, तो गाया भी हुआ है बृहस्पति की दशा है, परंतु फिर परंतु आता है, परंतु आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं, चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण फिर गिर जाते हैं। बाबा नशा चढ़ाते हैं तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, लेकिन वो कायम तब रहेगी जब याद भी कायम हो, अगर याद नहीं है तो फिर गिरेंगे, फिर भूले होंगे, फिर बाबा कहते हैं गिर जाएंगे, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर, फिर क्या होता है मूर्छित हो जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर क्या होता है मूर्छित हुआ लक्ष्मण, मूर्छित हुआ तो क्या किया हनुमान, गया संजीवनी बूटी लाने। तो बाबा कहते हैं पूरा अटेंशन देते हैं नहीं देते हैं योग पर, फिर बाप आकर के संजीवनी बूटी देते हैं, बेहोश हो गए तो माया के वश हुए, माया का बाण लगा तो बेहोश हो गए, तो फिर बाबा संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं, बेहोश हो गए फिर सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो तो कौन बूटी देगा, जो मुरझा गए मूर्छित हो गए तो फिर उनको बूटी कौन देने जाएगा, हनुमान, तो हनुमान बूटी लाता है, तो कौन है हनुमान, हम बच्चे, तो हम क्या करते हैं फिर उन आत्माओं को जगाते हैं, भाई जागो क्यों नहीं तुम आते हो, क्यों नहीं बाबा की मुरली सुनते हो, तो उनको वो जाग जाते हैं, फिर बाबा की मुरली सुनने आते हैं। तो हनुमान भी तुम हो, बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुगा देता हूँ। बाबा याद की बूटी सुगा देते हैं, किस लिए? रावण को भगाने के लिए। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं, सत्य है ही एक बाप, जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाकर सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है सत्य, बाप को क्या कहा जाता है? ट्रुथ, अंग्रेजी में ट्रुथ कहते हैं, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं, हाँ लोग कहते हैं ना हम लोगों को कि तुम शास्त्रों को मानते हो, तो भगवान तो हमें सत्य बता रहे हैं, लेकिन लोग पूछते हैं आप लोग शास्त्रों को मानते हो? तो उनको बोलो हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? कितनी बातें बाबा सुनाते हैं ना शास्त्रों की, लेकिन उनका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं, तो मानते हैं पर आध्यात्मिक रूप से मानते हैं। हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं ये सब भक्ति के शास्त्र हैं, ये तो हम मानते हैं हाँ कि ये भक्ति के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति ये दो अलग चीजें हैं। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है तो दुनिया की तो उतरती कला है, हमारी चढ़ती कला है, क्योंकि ज्ञान मिला है फिर धीरे धीरे सृष्टि का परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली सबकी चढ़ती कला हो जाएगी। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है, तो भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। हाँ, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा भक्तों की रक्षा करने वाला एक भगवान ही है। रक्षा किससे की जाती है? दुश्मन से, क्योंकि दुश्मन आक्रमण करता है तो उसे रक्षा करते हैं अपनी, तो रक्षा दुश्मन से की जाती है। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है, तो मैं तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है, बाबा की याद से कैसे बाबा मदद करते हैं और रावण से रक्षा होती है, ये हर एक को अनुभव है। इस रावण पर तुम्हें जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग, फिर कला कम होती जाती है, अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है मास के बाद अथवा 6 मास के बाद, कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता है। पहले चीज नई है, धीरे धीरे पुरानी होती है, फिर तोड़ना पड़ता है, फिर नई, तो फिर हर चीज नई से पुरानी, फिर वो उसी पुराने से कुछ मटेरियल लिया तो फिर नया बनाया। तो बाबा कहते हैं नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। तो समझा जाता है ये मकान 100 साल तक चलेगा या 150 वर्ष तक चलेगा। तो बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से, फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वो है चंद्रवंशी, और उनकी निशानी क्या देते हैं? चंद्रवंशी की निशानी क्या देते हैं? सतयुग सूर्यवंशी, तो श्री कृष्ण उनकी निशानी है बांसुरी मुरली, और चंद्रवंशी की निशानी श्री राम, तो उनकी निशानी क्या दिखाते हैं? हाँ, इंद्रधनुष। तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी देते हैं क्षत्रियों की, तो क्षत्रिय माना हमेशा लड़ाई के मैदान में जाने वाले, तो इंद्रधनुष अर्थात लड़ाई में जाने वाला। तो उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, पूरा विजयी नहीं बना, तो इसीलिए त्रेता में राजाई मिली। तो क्षत्रिय कहेंगे क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसीलिए कम पोजीशन हो जाता है। हाँ, कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़ी कभी कहते हैं रामपुरी में जाएं। रामपुरी में जाने के लिए नहीं पुरुषार्थ करते, कृष्णपुरी में जाएं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, एक छंद है भक्ति मार्ग में, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। पर ऐसे कभी नहीं कहा भजो राम चलो अयोध्या, ऐसे नहीं। भजो गोविंद चलो वृंदावन, वृंदावन की ही बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। अब कैसे कैसे प्यार से याद करते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं तो क्या कहते हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले, श्री कृष्ण जैसा भाई मिले, बच्चा मिले, पति मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वो श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। लौकिक में जो समझदार होते हैं ना, वो श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखेंगे, कहेंगे इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी क्या है, अभी है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्ण की बहुत, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण को सब याद करते हैं, तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। याद तो करते आए हो श्री कृष्ण की पुरी को, अभी उस अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, कम से कम इनके घराने में तो जाओ, पहले नंबर में आओ। श्री कृष्ण की जो राजधानी है, जो रॉयल फैमिली है, उसमें तो आओ, उनके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो, राजकुमार से झूलो, श्री कृष्ण के साथ झूलो, ऐसा पुरुषार्थ करो। ये समझ की बातें है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, ऐसे नहीं केवल श्री कृष्ण की याद में रहो, याद तो शिव बाबा को करना है, तभी तो कृष्णपुरी में जाएंगे। बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, ज्ञान नहीं गिराएगा। हाँ, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। ज्ञान तो फिर भी बुद्धि से समझ जाते हैं, लेकिन बाबा की याद नहीं है तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अला अवलदीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुहिलरा डाल देते हैं, हातम ताई के खेल में आता है, मुख में मुहिलरा डाल दिया तो जो विघ्न आना था वो विघ्न से बच गया, क्योंकि मुहिलरा मुख में था। तो मुख में मुहिलरा डाल देते थे, किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, हाँ कुछ गुस्सा कर लेते हैं, पर मुख में मुहिलरा होगा तो गुस्सा नहीं करेंगे, तो वो जो कुछ विघ्न आना होगा वो विघ्न टल जाएगा। चलो बॉस ने गुस्सा किया पर आप शांत रहे, तो वो समझ जाएगा कि हाँ हमको ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर हमने भी गुस्सा कर लिया तो बॉस तो और भी गुस्से में आ जाएगा, पर हम शांत रहेंगे तो बात टल भी जा सकती है। तो बाबा कहते हैं याद में रहने के लिए मुख में मुहिलरा डाल देते थे, किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो तो मुंह खुलेगा ही नहीं तो बोलेंगे नहीं, बात बात नहीं करेंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। तो बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करो, वाक युद्ध तो बिल्कुल कभी होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मुख बंद तो वो वाक युद्ध खत्म हो जाएगी। एक तरफ ये होगा हाथ है तो दूसरा तरफ हाथ लगेगा ही नहीं तो आवाज होगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं, बाप जब आए तब तो आकर के ये बातें समझाए, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। हिस्ट्री में भी किसकी महिमा आती है, वो होकर गए हैं ना, जैसे टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को बाबा ने याद किया, झांसी की रानी सब होकर गए हैं, उनके फिर नाटक बनाते हैं, झांसी की रानी का नाटक बनाते हैं, उनका रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाटक बनाते हैं, क्योंकि वो होकर के गए हैं। तो बाबा ये क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबा कहते अच्छा शिव भी होकर के गए हैं, उनका भी नाटक बनाते हैं ना, शिव भी होकर गए हैं तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया क्या आकर किया ये पता नहीं है। वो तो सारी सृष्टि का बाप है शिव, जरूर आकर के सबको सदगति दी होगी, इस्लामी बोधी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी भी जयंती मनाते हैं ना, मनाते ना जयंती उन धर्म पिताओं की, तिथि तारीख सबकी है, इनका तो किसको भी पता नहीं, शिव बाबा का किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, स्वास्तिका भी जब बनाते हैं तो उसमें पूरे चार भाग करते हैं, चार युग का ये संकेत है, चार भाग स्वास्तिका का माना चार युग, ये चार युग है, आयु कम जास्ती हो न सके, हर एक युग की आयु बराबर बराबर है, इसीलिए चारों जो युग बनाते हैं वो बराबर बराबर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं 1250 साल, 1250 साल एक एक युग है तो बराबर बराबर है, तो आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं पूरे चार भाग हो जाते हैं, इतना बड़ा हांडा है। हाँ देखा, हम गए थे देखने जगन्नाथपुरी में, तो वो अंदर ही वो हांडे में ही ऐसे चार भाग है, तो चार भाग है तो एक भाग निकालते हैं फिर तीन भाग होते हैं फिर दूसरा भाग निकालते हैं, सब एक साथ ऐसे नहीं निकालते क्योंकि चार भाग हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं पूरे चार भाग हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है, अगड़म बगड़म माना गड़बड़ घोटाला कर दिया है, क्यों, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 बताते हैं, फिर द्वापर की आयु डबल द्वा माना डबल 8,64,000 बताते हैं, फिर त्रेता की आयु फिर ट्रिपल, फिर सतयुग की आयु उससे वो चार बार, तो एकदम अगड़म बगड़म बाबा कहते कर दिया है, ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ, जो कुछ तुमने सुना है वो सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये याद करो, ये अभ्यास रखो, बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, स्वर्ग का रचयिता है तो हम बच्चों को स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे ना। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं, बाप तो स्वर्ग में ही भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है, आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है आत्मा पहले जब आती है तो पहले सुख फिर दुख देखती है। तो बाबा कहते हैं विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, क्या समझते हैं, हाँ विलायत वाले भी सेंसिबल है। अभी सेंसिबल किस रूप में है कि सब तमो प्रधान हो गए हैं तो उनके विनाश के लिए ये बॉम्ब्स बनाए हैं, इसमें सेंसिबल है विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाने में। विलायत वाले सेंसिबल है, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। इतने सेंसिबल है, समझदार है साइंटिस्ट, वो इतने रिफाइंड बॉम्ब्स बनाते हैं जो फट से खत्म हो जाए, तड़प तड़प के न मरे तो फट से खत्म हो जाए, तो इससे समझदार है। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल फट से खत्म कौन क्या होता है, जैसे आजकल मुर्दे को बिजली में फट से खत्म कर देते हैं। अब वो चिता जलाएंगे, इतनी लकड़ी रखेंगे, फिर एक एक करके वो लकड़ी रखता है, फिर हाँ घी लगाता है, फिर आग लगाते हैं, तो कितना टाइम लगता है। और अगर वो उसमें डालते हैं, फर्नेस में डालते हैं, बिजली में डालते हैं, तो फट से यहाँ से गया और फट से खत्म, और फिर खोलते हैं तो राख बचती है, तो कितना जल्दी खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब्स भी ऐसे बनाए हैं फट से खत्म। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल मुर्दे को बिजली में बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे, शरीरों को आग लग जाएगी, आत्माएं उड़ जाएगी। भंभोर को आग लगनी है, तूफान भी ऐसे आते हैं जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव भी कर सके। अब सब खत्म हो गया, सब डूब गया, तो क्या बचाव करेंगे, बचाव भी नहीं कर सकते हैं। विनाश तो होना ही है ना, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, जैसे जो पता ही नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ेगा, बैठे और बॉम्ब आया खत्म, सब जल के राख हो गए। यूरोप वासी बॉम्ब ऐसे छोड़ेंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मौफिक पढ़ रहे हो, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। अब वृद्धि होने का समय है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, फिर स्थापना हो जाएगी। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं, योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन, अब राखी आ रही है तो बाबा सावधान कर रहे हैं, बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है, नाम बदनाम हुआ तो धक्का जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना, अगर किसके अंदर कुछ है भी छोटा मोटा नाम रूप का कुछ भी है, इस रक्षाबंधन पर जब राखी बांधेंगे तो सब कुछ बाबा को अर्पित कर देना, कुछ रहा हुआ भी होगा तो। तो बाबा कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहां तो रक्त की नदियां बहनी है, भारत में बॉम्ब नहीं गिरेगा, है ना। बाबा कहते यहां रक्त की नदियां बहेंगी तो यहां दुखी होके मरेंगे। रक्त की नदियां पर, रक्त की नदियां बहने के बाद फिर दूध घी की नदियां बहेगी, और वहां यूरोप में, अमेरिका में, वहां तो बॉम्ब्स गिरेंगे, तो बॉम्ब्स में तो फट से विनाश हो जाएगा, फट से आग लगी खत्म। यहां उस रूप से नहीं होगा, यहां तो रक्त की नदियां बहेंगी, सिविल वॉर जिसको बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं, यहां तो रक्त की नदियां बहनी है, सतयुग में दूध की नदियां बहती है, वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, नई दुनिया के वैभव तो देखो, और उसकी भेंट में कलयुग में क्या है। यहां तो कुछ भी है नहीं, बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देखकर आती है, सूक्ष्म वतन में कहती है हमको शुभी रस पिलाया बाबा ने, शुभी रस पिलाया, ये किया वो किया, हाँ वो बताती, अपना अनुभव सुनाती है। अब ये साक्षात्कार सब होते हैं, बतलाते हैं, हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं, सब साक्षात्कार करती है बाबा के। उस समय तो बहुत करते थे जब पट्टी में थे, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत कुछ देखा बच्चों ने, लेकिन बाबा कहते हैं इनसे कुछ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? अगर साक्षात्कार करने से उनको कोई शक्ति आई होती तो फिर माया उनको भागंती क्यों कराती? पर वो भी भागंती हो गई, कितने कितने साक्षात्कार करने वाले वो भी भागंती हो गए। तो बहुत बच्चियां, अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी गुम हो गए, भागंती हो गई। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने फिर जाकर के शादी की। वंडर लगता है बाबा को, वंडर लगता है किस बात का, माया कैसी है, माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने बहुत मदद भी की, तो भी आज है नहीं। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। भगवान को भी माया के लिए कहना पड़ता है, माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है माया से युद्ध को क्या नाम देंगे, योग बल की लड़ाई। माया से युद्ध माना योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको भी पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं, तो मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है कि प्राचीन राजयोग जो गाया हुआ है, हाँ वो क्या है। तो क्या है राजयोग, गीता में तो है, और क्या बताया राजयोग के लिए भगवान ने, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, यही राजयोग है। तो राजाई के लिए मुझे याद कर, तो बाबा कहते हैं प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर्स आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं, इतनी फिलोसॉफीज, इतने दर्शन बताते हैं, दर्शन शास्त्र कितने हैं, अलग अलग उनके दर्शन हैं, अलग अलग वो बातें बताते हैं भगवान के बारे में या इस सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में। तो बाबा कहते हैं लेकिन भगवान जो सुनाते हैं वो तो सबसे अलग है। तो बाबा कहे जो भी फिलोसोफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं, रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। ये फिलोसॉफी नहीं है, दर्शन शास्त्र नहीं है, ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमे गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई हुई है। तो बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, इस ज्ञान को ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके, भले कितने बड़े फिलोसोफर्स हो जाए लेकिन अपने को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकेंगे। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं, अनेक नाम रख दिए हैं शिव के। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं है। विष्णु के भी बहुत नाम है लेकिन इतने नहीं जितने शिव के नाम हैं। बबुल नाथ भी इनको कहते हैं, बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है इसलिए उनका नाम बबुल नाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, गाम देवी के पास ही है बबुल नाथ का मंदिर। हम खास जब बॉम्बे, अभी वैसे तो पता नहीं था बबुल नाथ कहाँ है, तो जब मैं गाम देवी गई तो गाम देवी वालों से पूछे बबुल नाथ का मंदिर कहाँ है, तो हमको लेके गए थे। इतनी छोटी सी गली, इतनी छोटी गली और इतनी गंदी, इतना गंदगी है वहाँ जो बात मत पूछो, बहुत। और बिल्कुल, और वहीं पर बाबा का भी मकान था जहाँ बॉम्बे में बाबा आते थे और उस मकान में रहते थे। तो अभी उस मकान में भी गए तो कहा कि हमारे बहुत साल पहले दादा लेखराज यहाँ आते थे, इस मकान में रहते थे। तो बताते हैं गाम देवी के पास ही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनका नाम बबुल नाथ रखा है। तो बाबा बॉम्बे आते थे तो बबुल नाथ मंदिर में जरूर जाते थे। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम शिव है। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं तो 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव का। सिंधी लोगों के लिए जो है, सिंधी लोग जब भी उनको 0 लिखना होगा वो 0 नहीं कहेंगे, शिव कहते हैं। तो 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ ना, स्टार माफिक। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, तिलक भी देते हैं या चंद्रमा लगाएंगे उसके ऊपर, जैसे सूरज तो चंद्रमा और सितारा, ऐसे भी तिलक लगाते हैं। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, माता और पिता, माता और पिता। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वो अर्थ तो जानते नहीं। तो बाबा योग पर समझा रहे थे, योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, मैं आकर योग सिखाता हूँ, ये भगवान ने नहीं कहा। मैं तुम बच्चों को कहता हूँ मुझे याद करो, भगवान ने भी याद शब्द कहा है, गीता में ये शब्द है, लेकिन वो योग के अलग अलग चैप्टर्स बना दिए। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है, उनको साजन भी कहा जाता है। बाबा आकर साजन आकर क्या करते हैं, पटरानी बनाते हैं। हाँ, दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण ने भगाया, पटरानी बनाया, तो पटरानी बाबा बनाते हैं। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अभी कितने बाप है हमें, 3 बाप। अभी तुम्हें 3 बाप मिले हैं, कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो, सतयुग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, इसीलिए वहाँ एक ही बाप है। न अलौकिक ब्रह्मा बाप को जानते हैं, न शिव बाप को जानते हैं, केवल लौकिक बाप को जानते हैं सतयुग में, तो एक ही बाप है। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो, कितनी सहज समझने की बातें हैं, है ना, कितनी सहज बाबा समझाते रहते हैं। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं, मुहिलरा डाल दो, मुख में मुहिलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा, कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैं पन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैं पन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा कौन सा है? ये मैंपन। बहुत महीन है और सुंदर भी बहुत है। हाँ, मैंपन। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार भी ले जाने वाला है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। देह अभिमान का भी मैंपन है और देही अभिमानी का भी मैंपन है। तो ये देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी मैंपन है और देह भान अभिमान में लाने वाला भी मैंपन है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है, देह अभिमान के रूप में मैंपन आता है, तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। दे अभिमान का मैंपन किसी देहधारी या वस्तु का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है। अब किसी ने किसकी बुरी बात हमको बता दी और मेरे अंदर मेरे मन में वो बात बैठ गई, हाँ ये तो है ही ऐसे बुरा, और फिर मैं जब उसको देखूंगी तो उसी घृणा की दृष्टि से देखूंगी। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना। कई बार अच्छी बात सुनकर भी घृणा आती है, ईर्ष्या होती है ना, तो अच्छी बात को भी हम उसको घृणा ही आती है उस समय। ये भी परमत है कि उसने कहा और हमने मान लिया, हमने कहा ऐसा ही होगा, फिर घृणा आ गई, तो ये भी तो परमत है ना, उसकी बात मान ली। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो तब कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो तब कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है। क्या गायन है? प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। धर्त पर ये धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुवीर रीत सदा चली आई। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो।